ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஏ பர்யாப்தம் நீ ஹோத்தா ஹே பாச ஹே அதிக்கா நீக்கோ பர்யாப்த லோக மே நீ கே பார் क्या कहते कमाते खाते कमाते खाते अधिक नहीं ये पर्याप्त नहीं कहते. पर्याप्त होता है तो बहुत देने पर समाप्त नहीं होता है. ऐसे पहले अभी भी करने वाले करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं, खाते खिलाते देते हैं. वहां हरिद्वार ऋषि के समय पंजाब से अन्न अनाज गेहूं आदि चावल अभी भी आते हैं, लाते हैं. बहुत बड़े बड़े सब लोग देते हैं, ट्रक में मंडी से लाते हैं. कुंभ में भी बहुत आता है. अन्य लोग को कोई धन दे देते हैं अन्न के लिए, तो अन्नदान होता है, करते अभी भी करते हैं. तो ये जो उपासना करता है वो पर्याप्त अन्न प्राप्त करता है. ये अन्न ब्रह्म उपासते, अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करता है. क्योंकि अन्न ही फिर दोबारा उसको कहते हैं उपासना का फल क्यों होता है, क्योंकि अन्न ही भूतानाम ज्येष्ठम. भूत अन्न में आदि कोष होता है, जितने प्राणी है सबका ज्येष्ठ पहले अन्न है. देह में ही स्थूल शरीर बनने पर ही भोग होता है. जब इंद्रिय सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर होता है भोग आयतनम. जब स्थूल शरीर में आकर के सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट होता है तभी भोग होता है. इसलिए स्थान में आया था पंचीकरण भूतों की उत्पत्ति के बाद इंद्रिय की उत्पत्ति कही गई. इसमें आया था पंचीकृत भूत के बाद इंद्रिय की उत्पत्ति कैसे होगी. इंद्रिय तो अपंचीकृत भूत सूक्ष्म भूत, उसकी उत्पत्ति पहले पंचीकरण बाद में. तो वहां कहा गया था पंचीकृत भूत से देह बनेगा स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर में आश्रित होकर के ही इंद्रिय के द्वारा व्यापार, प्राणी के द्वारा मन के द्वारा व्यापार होने से भोग होता है. इसलिए पंचीकरण पंचीकृत भूत उत्पत्ति के बाद इंद्रिय की उत्पत्ति कही गई. इसलिए पंचीकृत भूत होने से अन्नमय कोष बनता है, उसमें फिर अन्य कोष के प्रवेश होने पर भोग होता है, इसलिए उसको ज्येष्ठ कहा गया. अन्नमी भूतानां ज्येष्ठम प्रथम जहि तस्माद सर्वौषधमुच्यते. ये सर्वौषध का सारे प्राणियों के औषध क्षुधारूप दाह को प्रशमन करने के लिए ही. अन्नाद भूतानि जायन्ते, सारे भूत अन्न से अन्न रस परिणाम जो पहले कहा था उसके फिर कहते हैं सारे भूतों से अन्न रस परिणाम होकर के जन्म होते हैं. जातानि अन्नेन वर्धन्ते, अन्न में को समय का अन्नाद जायते अन्नेन वृद्धि प्राप्नुवन्ति. अन्न से बढ़ते हैं, अन्न खा करके रोज रोज अन्न रस परिणाम होकर के शरीर की वृद्धि होती है. इसको अन्न क्यों कहते हैं. अन्न अद्यते इति अन्नम, अद्यते जो खाया जाता है, अद्यता से त प्रत्यय होता है तो अन्न बन जाता है, खाया जाता है. इसलिए अन्न केवल खाया जाता नहीं, वो खाता भी है सबको. खा करके बढ़ते हैं, अंत में शरीर को पृथ्वी खा लेती है. अद्यते अतिच भूतानी, अद्यते मतलब खाया जाता है, भूत के द्वारा खाया जाता है, इसलिए अन्न हुआ. और अतिच भूतानी सबको खा लेता है. जो अन्न रूप पृथ्वी में सारे शरीर लीन होते हैं, ये पृथ्वी से शरीर बनता है और सबके शरीर फिर पृथ्वी में लीन हो जाता है. इसे सबको सबके द्वारा खाया जाने से और सबको खा लेने से वो अन्न हुआ. अद्यते अति अति का खाता है भूतानी. तस्माद अन्नम, इसलिए अन्न कहते तद उच्यते, इसे उसको अन्न कहते हैं. तस्माद वे तस्माद वा वे वा हो गया. तस्माद वा ए तस्माद अन्न रसमयात अन्यो अंतरात्मा प्राणमय. ये जो अभी तक अन्न रसमय को अन्न ब्रह्म का अन्नमय कोष में अहम बुद्धि होती है. पहला कोष बताया अन्नमय कोष, ये स्थूल शरीर है अन्नमय कोष. स्थूल शरीर में अहम बुद्धि होती तब मैं मनुष्य, मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये बुद्धि होती. अहम गच्छामि, ये हम स्थूल, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं. अन्नमय कोष स्थूल शरीर में अहम बुद्धि होती है. यहां स्थूल अरुंधति न्याय से पहले कोष को समझा. एक पांच कोष के अंदर है, पांच कोष के अंदर ब्रह्म है, तो पहला कोष को देखना है. कोष कहाँ है, कहेंगे खड़ को लेके, खड़ को ले आओ. कहते खड़ को कहाँ है, बताते कोष में है. तो कोष नहीं दिखेगा तो खड़ को ला सकते हैं. तो कोष कहाँ है, पहले कोष को दिखाओ. इसलिए अभी पांच कोषों को दिखाने के लिए पहला कोष को दिखाया, पहले ये कोष देखो उसके अंदर है, कोष दिख लिया तो उसी के अंदर ढूंढना है। बाहर ढूंढ रहे थे बहुत, कमरा में कहां है खड़ग, खड़ग कहां है देखा, बता दे देखो वही कोष में, कोष कहां है, कोष को दिखा दे, ही कोष अलमीरा में है कहीं, कोष दिखा दिया। कोष दिखाने के बाद अभी आपको खड़गो कहां ढूंढना, कोष अभी कोष को पकड़ेगा, कोष के अंदर ढूंढना। पहला कोष दिखा दे अन्नमय कोष, परमात्मा सर्वव्यापक है सर्वत्र है, किन्तु उसको उपलब्धि के लिए यही दिखेगा, उपलब्धि होगी। यद्यपि खड़ग परिचन्न होने से खड़ग कोष के अंदर बाहर नहीं है, खड़ग कोष के अंदर बाहर नहीं है, किन्तु यहां जो ब्रह्म सर्वव्यापक है सर्वत्र होने पर भी उसकी उपलब्धि कोष के अंदर होने से कोष के अंदर कहा गया। बाहर भी है, बाहर होने पर भी उपलब्धि नहीं होती, जब साक्षात्कार उपलब्धि उपलब्धि किसको हो, ये कोष के अंदर होगा। परब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है हृदय में ही होता है, इसलिए कहा गया हृदय से जुड़न तिष्ठति सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूतान हृदय से, व्यापक होने पर भी हृदय में उपलब्धि होती, मन सेवा अनुद्रष्टव्यम बुद्धि ग्राह्यम, इसलिए यहां ढूंढना है। उपलब्धि करने की इच्छा है तो यही ढूंढना है, और जहां ढूंढेंगे तो मिलेगा। पहले अन्नमय कोष को देख लिया पहला, उसके बाद समझना उसके अंदर कोष, अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, उसके अंतर अन्य है अर्थात अन्नमय कोष से विलक्षण है। पहले अन्नमय कोष को समझ लिया खड़ग, ये जैसे कोष को देख लिया खड़ग, ये कोष खड़ग है, कहते नहीं ये खड़ग नहीं उसके अंदर देखो, इसी प्रकार अन्यो अंतर इससे अन्य है, अन्नमय कोष से भिन्न है, अंतर है वो आत्मा है प्राणमय, प्राणमय प्राण प्राय प्राण प्रधान है प्राणमय हुआ, अन्य अंतरात्मा प्राणमय, वो प्राणमय कितने बड़ा है का तेन एष पूर्ण, तेन का अर्थ प्राणमय न, एष का अर्थ अन्नमय कोष पूर्ण है, तेन तेन का क्या अर्थ प्राणमय से, एष का अर्थ अन्नमय भरा हुआ है, क्योंकि छांचा छांचा बनाते हैं, काला अन्नमय प्रारंभ हुआ था, छांचा बनाते हैं तो उसमें ताम्र पित्तल स्वर्ण आदि पिघल करके उसमें डाल दो, छांचा से मूर्ति निकलती है, छांचा बन जाने पर पिघल करके उसमें डालते धातु डालने ठंडा होने पर निकालेंगे सुंदर मूर्ति निकल जाती है। इसी प्रकार अन्नमय कोष के अंदर प्राणमय कोष है, तेन प्राणमय कोष से अन्नमय कोष पूर्ण है, छांचा के अंदर है ये निकलता है प्राणमय कोष। स वाय स पुरुष विधेय स, वह जो प्राणमय कोष है ये पुरुष विध, पुरुष अन्नमय कोष पुरुष आकार है, उसी छांचा के अंदर निकला प्राणमय कोष, वो भी हो गया पुरुष सदृश हुआ, पुरुष के समान है। तस्य पुरुष विध आचा, ये पुरुष विध कैसे हुआ, जब प्राण का आकार क्या पुरुष आकार है, कहते नहीं स्वतः पुरुषाकार नहीं है, अन्नमय कोष पुरुषाकार है, वो पुरुषाकार होने के कारण उससे परिचिन्न जो प्राण वो भी पुरुषाकार हुआ। स्वतः प्राण वायु है और पुरुष के आकार जैसे उसका आकार नहीं है, स्वतः नहीं है, फिर कैसे पुरुषविध होगा। तस्य पुरुषविधता अनु अयम पुरुषविध, तस्य का प्राण अन्नमय, अन्नमय कोष पुरुष आकार होने से उसके पीछे अयम प्राणमय भी पुरुषाकार हो गया, अन्नमय पुरुषाकार चांचा उसके अंदर उसमें पूर्ण है, उसके अंदर प्राण वो भी पुरुषाकार हुआ, स्वतः नहीं उसके कारण ये पुरुषाकार हुआ, स्वतः प्राण है व्यापक है। इसलिए अन्नमय कोष लेकर के जो मानता था पहले यही मेरा स्वरूप है, ये अन्न केवल स्वरूप नहीं, अन्न के अंदर जो प्राण है वो प्राणात्मक स्वरूप है, अन्न से अन्न रस में अन्नमय कोष के अंदर भरा हुआ वो पूर्ण जैसे वो ही अंतरात्मा, वास्तव उसे मिथ्या कर तो अन्नमय कोष उसके अंदर उसको देखना। ये चाव तंडुल आदि निकालते हैं उसमें कोष आदि रहता है धान के हटा हटा करके निकालते हैं, इसी प्रकार ये पिंड के समान हो गया, आत्मत्व ने पहले अन्नमय कोष ग्रहण हुआ उसके बाद वायु लेना प्राणमय कोष, और वायु ये जो बना लोहार लोहा कार्य करते समय ये चमड़े के ढौकने रखते थे पहले, उसमें वायु भर जाता, ऐसे करने से वायु निकलता, ढौक भर जाएगा फिर मान देंगे। जिस प्रकार उसमें वायु भर जाता है अन्नमय में, ऐसा प्राण भरा हुआ है, इसलिए ये प्राणमय आत्मा हुआ, पुरुषाकार हो गया। सत पुरुषाकार तो नहीं है किंतु अन्नमय पुरुषाकार से ये भी पुरुषाकार हो गया। इसलिए यह जो प्राणमय पुरुष हुआ, ये प्राणमय को सब पुरुषाकार होने से उसका भी शिर आदि होना चाहिए, जैसे अन्नमय का शिर आदि कहता है इसका भी शिर आदि होना चाहिए, इसे इसका शिर आदि कहते हैं। तसे प्राण एवं शिर, प्राणमय कोश का शिर हो गया प्राण, प्राण मुख्य हो गया, प्राण शिर हो गया, पांच है प्राण पान व्यान उदान समान, प्राण हो गया प्रधान शिर स्थानीय हुआ, और व्यान हो गया दक्षिण पक्ष प्राण के बाद व्यान, और अपान हो गया उत्तर पक्ष आकाश आत्मा। आकाश में स्थित वायु को आकाश शब्द से कहा, तो समान वायु है आकाशस्थ वायु को मंचा क्रोशंत में, जैसे मंचस्थ पुरुष को मंचा शब्द से कह देते हैं, आकाशस्थ वायु को आकाश शब्द से कहा, तो आकाश आत्मा मतलब आकाश में स्थित जो समान वायु उसका आत्मा हुआ, जो अध्याय दौड़ा आत्मा हुआ था। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, यहाँ पृथ्वी शब्द से पृथ्वी अभिमानी देवता, पृथ्वी में देवता है, पृथ्वी देवता पुच्छ के समान है ये प्रतिष्ठा, वो इसको खींच कर रखता है। तदप्य श्लोक भवति, इसको कहने के लिए आगे मंत्र है प्राणमय कोश को कहने के लिए। यह कहा गया उदान वृत्ति से शरीर ऊपर चल जाएगा, इसे उसको खींच कर पृथ्वी देवता अपान वायु नीचे खींच कर रखने से शरीर स्थित होता नहीं, शरीर गिर जाएगा। यह प्राण वायु, वायु तो व्यापक है, तो यह उपाधि परिच्छिन्न करके एक अन्नमय के अंतर्गत करके उसके पुरुषाकार हुआ। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्चये प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायु समुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायु समुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्माद् प्राणमयात् अन्वन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सवायष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयम् पुरुषविद तस्य यजुरेव शिरः ऋग् दक्षिणः पक्षः साम उत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरस पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, प्राण के अनुकात पश्चात, प्राण के पीछे देवता लोग प्राणन व्यापार करते हैं। प्राण हो गया वायु है, पूरा समष्टि वायु सबके अंदर बाहर है, उसके वो प्राणन व्यापार वायु में होने से देवा अग्नि आदि देवता भी व्यापार करते हैं, उसी शक्ति से शक्ति वाले होते हैं। समष्टि प्राण का अंश है सब देवता, जितने देवता है समष्टि देवता को हिरण्यगर्भ कहते हैं। प्राणम अनु देवा प्राणंती अग्नि देव वायु आत्मा का प्राण वायु समष्टि वायु के प्राणन शक्ति वाला होने से उसके पीछे तद्रूप होकर के अन्य अग्नि देवता भी प्राणन व्यापार करते हैं, प्राणन क्रिया से क्रिया वाले होते हैं। और दूसरे प्रकार भी कहते हैं, यहां जो देवाकार से इंद्रिय लेना, प्राण के पीछे मुख्य प्राण के पीछे प्राण के कारण इंद्रिय व्यापार होता है। एक समष्टि रूप लिया, समष्टि प्राण के प्राणन शक्ति युक्त होकर के अग्नि आदि देवता प्राणन व्यापार करते हैं, क्योंकि समष्टि देवता है हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण अभिमानी, और अग्नि आदि है अलग अलग देवता। सारे देवता की समष्टि देवता कहते हिरण्यगर्भ को, मुख्य प्राण समष्टि प्राण के प्राणन शक्ति होने से अन्य अग्नि आदि देवता में भी प्राणन शक्ति एक हुआ व्याख्यान। और देह के अंदर विचार करते हैं, व्यष्टि में मुख्य प्राण है, उसके पश्चात इंद्रिय व्यापार, चक्षुरादि इंद्रिय में जो व्यापार होता है प्राण पूर्वक, इसे चक्षुरादि इंद्रियों को प्राण शब्द से कहते, देव शब्द से कहते, क्योंकि वहां प्रकाशन इंद्रिय ज्ञान कराने वाले है। दिव दिव धातु प्रकाश अर्थ के द्वितीय अर्थक इंद्रिय को देव शब्द से कहते है। वह भी इंद्रियों को प्राण शब्द से कहते हैं, क्योंकि प्राण व्यापार पूर्वक ही इंद्रियों का व्यापार होता है। मुख्य प्राण चेष्टा के होने से प्राण संवाद आया था, इंद्रियों में विवाद हुआ, मैं बड़ा सब बेड़ा कहते सब मुख्य प्राण ने कहा ऐसा मोह नहीं करो, मैं ही अपने को पांच भाग करके इसको धारण करता हूं। ऐसा कहने पर किसी की श्रद्धा नहीं हुई तो मुख्य प्राण निकलने लगा तो सब अपने स्थान छोड़कर चलने लगे। इसे सब ने प्रार्थना की आप ही श्रेष्ठ है, आप नहीं जाए, छोड़िए शरीर। तो मुख्य प्राण के पीछे ही सब इंद्रिय व्यापार होता है। प्राण ही भूतानाम आयु अच्छा अनुप्राणित मनुष्य पशुवश्च सारे इंद्रिय सारे देवता तो प्राण व्यापार करते हैं, केवल इतना नहीं सारे मनुष्य पशु आदि जितने जीव वो भी प्राण व्यापार करते हैं। प्राण ही भूतानाम आयु प्राणी भूत के आयु, जब तक प्राण है तब तक आयु है, जब तक आयु है तब तक प्राण है। आयु समाप्त हो गया तो प्राण नहीं रहेगा, लगाना रखना चाहते हैं। डॉक्टर लोग प्रयास करेंगे प्राण को रखने के लिए, यंत्र लगाते क्या वेंटिलेटर लगाते हैं, श्वास ब्रश चलेगा, लगाने के बाद भी वो भी फिर बाद में काम नहीं करेगा, नहीं तो उसको लगा कर रखाएंगे नहीं रहेगा। कहीं कहीं कोई कहते बहुत दिन हो जाता है, तभी जब समाप्त हो गया तो गया वो, तो क्या प्राण चला गया, आयु समाप्त हो गया। तस्मा सर्वायु समुचेति से प्राण को सबके आयु कहते, सर्वायु से कहते प्राणी आयु है। सर्वमेव तो आयुर्यन्ति ये प्राण ब्रह्म उपासते, जो प्राण ब्रह्म उपासना करते हैं, प्राण रूप ब्रह्म, ये प्राण रूप जो मैं प्राण अहमस्मि प्राण ऐसे उपासना है, मैं ही प्राण हूं, सारे भूत के आयु है, जीवन का हेतु मैं ही प्राण हूं, ऐसे जो उपासना करते हैं तो सर्वम प्राण सर्व आयु को प्राप्त करते हैं। सर्वमेव आयुर्यन्ति पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं जो प्राण ब्रह्म की उपासना करते हैं, दृष्ट फल कहा गया। ये प्राण की उपासना करते सारे सतम सतायुर्वे पुरुष सौ वर्ष आयु है पुरुष का, ऐसे कहा गया। यावद यस्मिन् शरीरे प्राण वसति तावद आयु कौशित के उपनिषद में आया, तो ऐसे उपासना करने वाले पूर्ण आयु को प्राप्त करते, इसका अभिप्राय जो बीच में कभी मरण हो जाता है किसी प्रकार ऐसा नहीं होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्राण ही भूतानाम आयु, प्राण ही भूतों का आयु है, तस्मा सर्वायु समुचेते प्राण को सर्वायु से कहते हैं। तस्य एव शरीर आत्मा शरीर होने वाले शरीर आत्मा उसे प्राणमय का आत्मा है। यह पूर्वस्य जो अन्नमय का आत्मा था वही शरीरमय का आत्मा है। तस्माद वा एतस्माद् प्राणमयाद् अन्यो अंतरात्मा मनोमय, तस्माद् वा एतस्माद् ये जो प्राणमय हुआ अन्नमय के अंदर प्राणमय हुआ तो उसी एतस्माद् प्राणमयाद् अन्यो अंतरात्मा, उसे प्राणमय से विलक्षण बिल्कुल प्राणमय भी आत्मा नहीं। एक कोश अन्नमय कोश जाने के बाद दूसरा कोश हो गया प्राणमय कोश, प्राणमय में मैं ही प्राण समष्टि प्राण एक करके उपासना करता है, जो पढ़ता है उपासना करता है फल भी बता दिया। आगे प्राणमय ही आत्मा ऐसे भावना हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, प्राणमय उपासना करते ही इसलिए अन्नमय से अलग मैं हूं, ये स्थूल शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं, मैं प्राणमय हूं, इस उपासना का फल बताया। ये उपासना से क्या करना है, अन्नमय में जो अहम बुद्धि उसको छोड़ना, अन्नमय को से मैं नहीं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तभी मैं प्राणमय समष्टि प्राण में हूं, मैं प्राण हूं ऐसी उपासना करें। किंतु प्राण से फिर अहम बुद्धि छोड़ने के लिए अन्यो अंतरात्मा मनोमय, प्राणमय भी कोश है अन्नमय कोश के समान, उससे भी अहम बुद्धि छोड़ना है, उससे अन्य आत्मा मनोमय। पहले कोश को देखेंगे तो कोश के अंदर उसको ढूंढेंगे, जैसे अन्नमय कोश को पहले ढूंढा, अन्नमय कोश मिलने के बाद उसके अंदर जाने के लिए अन्नमय कोश में अहम बुद्धि छोड़ो, उसको फेंको अंदर निकालो, अंदर हो गया प्राणमय कोश, प्राणमय कोश जो पकड़ा फिर वही आत्मा हो ऐसा संदेह होगा, इसे कहते न वो भी नहीं, उससे अन्य है आत्मा, उसको कहते मनोमय। अभी तृतीय कोश हो गया, अन्न में प्राण में उसके बाद मनोमय मनोप्राय मन ही अधिक है। तेन ऐस पुण्य तेन मनोमय न ऐस प्राणमय पुण्य प्राण में भी सांचा के समान हो गया उसके अंदर मनोमय से भरा हुआ है प्राणमय। सब ऐसा पुरुष विधेय मनोमय भी पुरुषाकार है क्या स्वतः पुरुषाकार है इसे क्या स्वतः पुरुषाकार नहीं है वो तो मनो उपाधि का लेकर के व्यापक आत्मा है उपाधि को लेकर के तदाकार होता है वस्तु तो तदाकार पुरुषाकार नहीं तो फिर पुरुषविद कैसे कहा गया तस्य पुरुषविदताम अन्वयम पुरुषविद प्राणमय पहले पुरुषविद हो गया अन्नमय के अंतर्गत प्राणमय प्राण भी वायु है व्यापक होने पर भी अन्नमय के अंतर परिचिन्न होकर के पुरुषाकार बन गया ये पुरुषाकार बनने से उसके अंदर जो परिचिन्न हुआ मनमय तस्य पुरुषविदता मनु प्राणमय पुरुषविद हो गया उसके पीछे मनमय भी पुरुषविद हो गया अनुकात पश्चात तस्य का क्या अर्थ है यहाँ तस्य पुरुषविदता मनु तस्य प्राणमयस्य पुरुषविदता मनु प्राणमय पुरुषविद होने से अयम अयम कौन है मनमय पुरुषविद हुआ यह जो पुरुषविद मनमय कोष हो गया अभी पुरुष है तो उसमें शिर हाथ पैर हाथ आदि बताना है तसे यजु रेव शिर यजु शब्द से यजु को शिर कहा मंत्र है यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद वेद का नाम है और मंत्र का नाम है यजुर मंत्र ऋग मंत्र साम यजुर्वेद में भी मंत्र यजुरात्मक मंत्र है ऋगात्मक मंत्र भी है सामवेद में भी यजुरूप मंत्र है ऋग रूप मंत्र है मंत्र का नाम ऋग यजु साम वेद का नाम भी ऋग यजु साम है किंतु ये नहीं कि ऋग वेद में खाली ऋग रूप मंत्र रहेगा यजुर्वेद में यजुरूप मंत्र रहेगा ऐसा नहीं वेद ऋग यजु साम अथर्व भी हो गया विभाग मंत्र का विभाग अलग है ऋग वेद में ऋग रूप मंत्र भी है यजुरूप मंत्र है साम भी है यजुर्वेद में ऋग मंत्र है यजुर मंत्र है साम मंत्र भी तो मंत्र वेद में क्या है वेद तो पूरा समूह शब्दात्मक किंतु यजु है ये हाँ गद्यात्मक जो मंत्र उसको कहते यजु श्लोक होता है पद्यात्मक एक पाद में जितने अक्षर दूसरे पाद में अक्षर करके इसे पाद की हिसाब करके पद वर्ण अक्षर गिनती करके श्लोकात्मक होता है उसको कहते रीख रिचा नियत पाद अवसान निश्चित पाद में समाप्त होगा श्लोक में ऐसा नियम है जिस अनुष्टुप छंद में एक पाद में आठ अक्षर है धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र आठ अक्षर हुआ एक पाद हुआ समवेता युद्धोत्सव द्वितीय पाद भी आठ अक्षर है तृतीय भी आठ चतुर्थी भी आठ है और कुछ अलग अलग पद है आठ अक्षर नौ दस ग्यारह सब विभिन्न विभिन्न छंद है तो पाद नियत अक्षर में समाप्त हो उसका नाम होता है रिख रिचा श्लोकात्मक जो छंद श्लोक उसका पाद समान अक्षर में समाप्त होगा और जो गद्यात्मक है जैसे अभी चल रहा है प्राणन देवानु प्राणंती मनुष्या पशवश ये सब कह जाएंगे यजुर्मंत्र जहां श्लोक होता है वो होता है ऋग रूप मंत्र ऋ और यजु दो प्रकार मंत्र हो गए श्लोकात्मक है ऋचा ऋख ऋचा भी कहते हैं और गद्यात्मक है यजुर्मंत्र वो अन्यत पाद अवसान पाद के अवसान निश्चित अक्षर नहीं कहीं दस अक्षर हुआ कहीं पंद्रह अक्षर हुआ क्या चार अक्षर हुआ ऐसे कुछ होगा गद्यात्मक हो गया यजु और शाम होता है गीत प्रधान ऋचा के ऊपर श्लोक के ऊपर आरूढ़ करके ऋचा के ऊपर उसका गान करते हैं